एक टॉपिक पे बात करना चाहता था जो प्राइमरली जब हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं उसके स्टार्ट में हमें महसूस होती है, एंड मैंने ये भी सुना है और देखा है कि उसकी वजह से काफ़ी लोग वर्कआउट करना छोड़ भी देते हैं, स्पेशली जब फेस्टिविटीज़ होती हैं या फिर जब न्यू ईयर आता है उसके बाद हमें एकदम लगता है कि हाँ हमने एक रेजोल्यूशन लिया है कि वेट लॉस करना है या मसल बिल्ड करना है, जिम की मेंबरशिप लेते हैं और उसके बाद हम चल पड़ते हैं जिम में। आपने ये भी देखा है कि पहले दिन हम पहुँचे जिम में, बहुत सारा वर्कआउट किया, आपको लगा रहे यार कुछ तो चीज़ें कर सकते हैं, और बिकॉज आप बिगिनर हो आपको अपने आप को ये प्रूव भी करना होता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, करेक्ट? आप आए थे 15 मिनट वर्कआउट करने के लिए, आपने किया 1 घंटे तक वर्कआउट, उसके बाद आप घर गए, उस दिन तो ठीक था, अगले दिन पता लगा आप मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, 2 दिन के बाद इनफैक्ट आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में पेन है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डॉम्स, DOMS, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, इसको कहीं कहीं पे मसल फीवर भी बोला जाता है। तो ये समझते हैं ये हमें होता क्यों है और इसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं या फिर हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने प्रेल्यूड आपको बताया 1 मिनट में, उससे ही आप समझ गए होंगे कि हमें डॉम्स होता क्यों है। हमें मसल स्ट्रेस, अक्यूट मसल स्ट्रेस की वजह से डॉम्स होता है। कोई भी चीज़ हम जो करना शुरू करते हैं जो हमने पहले नहीं किया होता है उस ड्यूरेशन या उस इंटेंसिटी का, उसकी वजह से हमें डॉम्स होता है। मतलब कि हम डेली सेडेंट्री थे, हम वर्कआउट नहीं कर रहे थे, एक दिन हम सुबह गए, हमने जिम में खूब सारा डंबल भांज लिया, पुशअप्स कर लिया, सिटअप्स कर लिया, पुलअप्स किया एक्सेट्रा, या फिर आप फुटबॉल खेलने चले गए या फिर क्रिकेट खेलने चले गए, उसके बाद 2 दिन के बाद आपको लगेगा कि पूरी आपकी बॉडी दुख रही है, आप मूव नहीं कर सकते हैं एक्सेट्रा, करेक्ट? और आपको लगता है कि अब आपसे वर्कआउट तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, इन सब के बारे में हम समझते हैं कि अगर किसी चीज़ की हद ना की जाए, अगर किसी चीज़ को अपनी हद में रह के किया जाए तो ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकती हैं। तो होता क्या है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो 3 में से 1 सिचुएशन होती है, जो आपकी मसल होती है वो या तो आप उसको जब वर्कआउट करेंगे तो शॉर्टन होती है वर्कआउट के दौरान, या फिर लेंथन होती है, मतलब इलॉन्गेट होगी, स्ट्रेच होगी, या फिर उसमें मूवमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब सोचिए आप जैसे कि आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, अगर आपने हाथ पूरा आपने नीचे आपने डंबल उठाया और आपने पूरा बाइसेप कर्ल किया तो क्या हुआ, जब ऊपर आ रहा है डंबल तो आपकी जो मसल है वो शॉर्टन हो रही है, करेक्ट? आपकी बाइसेप की मसल, जब आप पूरा नीचे तक आप लेकर गए तब क्या हुआ, आपकी मसल लेंथन हो रही, मतलब खिंच रही है, जैसे रस्सी नहीं होती खिंचती है, वैसे ही समझिए आप नायलॉन की रस्सी टाइप में है जो खिंच रही है। ये जो खिंचना होता है, जो लेंथन होना होता है, ये सिचुएशन जो होती है ये हानिकारक होती है आपके रिकवरी के लिए, या फिर ये इसका रीज़न, सॉरी, ये जो सिचुएशन होती है जिससे आपकी मसल्स लेंथन होती हैं इसकी वजह से आपको डॉम्स होता है, ओके? तो अगर इंग्लिश में जाने तो इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक और आइसोमेट्रिक, ये अलग अलग लोडिंग होती हैं, जो एसेंट्रिक होते हैं, एसेंट्रिक लोडिंग होती है उसकी वजह से डॉम्स होता है, कि मतलब जब आप डंबल को नीचे लेके जा रहे हैं और आपका हाथ पूरा लंबा हो रहा है, आपकी बाइसेप की मसल स्ट्रेच हो रही हैं, उसकी वजह से आपको डॉम्स होता है। ऐसे ही सेम आप कोई भी बॉडी पार्ट देखेंगे कि आप जहाँ पर मसल ज़्यादा स्ट्रेच हो रही हैं वो एक रीज़न होता है आपके डॉम्स होने का। तो ये तो लग रहा है हाँ अगर आप वर्कआउट करेंगे तो डॉम्स होगा ही होगा, करेक्ट? ऐसा नहीं है, आप काफ़ी हद तक उसको पहले तो मैनेज कर सकते हैं। अगर आप आज गए, आपने आज पुशअप्स करना शुरू किया, मान लीजिए आपने 5 पुशअप किया फ्लैट ज़मीन पे, उसके बाद अपना पैर आपने पीछे रख लिया किसी स्टूल पे, फिर आपने पुशअप्स किया या डिप्स मारे जो भी कहते हैं, और उसके बाद आप उठ के गए, आपने चेस्ट प्रेस किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर आपने फ्लाई भी कर लिया, उसके बाद क्या होगा, अगले दिन या दो दिन के बाद आपको दर्द शुरू हो जाता है। इंस्टेड आप क्या करिए, अगर आपको मान लो पुशअप्स करना शुरू करना है या कोई भी एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है, उसको आपको ग्रेजुअली, उसको आपको धीरे 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 बढ़ाना है। तो समझते हैं वो कैसे। मान लीजिए आपको पुशअप्स करना है, तो पहले आप ये करिए कि पहले आप सीधे ज़मीन पे जाके पुशअप्स मत करिए। अगर आपसे पुशअप्स नहीं हो पाते इन द स्टार्ट, तो आप एक बेंच ले लीजिए, आप बेंच पे पुशअप करिए। मतलब आपका पैर ज़मीन पे हो और हाथ आप बेंच पे वो करके एक 30-45 degree के एंगल पर करिए। आप दो दो या तीन तीन पुशअप्स के 5-7 सेट करिए, छोटे छोटे सेट्स करिए। इंस्टेड ऑफ कि आप गए और आपने 10 पुशअप एक साथ कर लिया ज़मीन पे, तो अभी क्या हुआ, पहले और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले में आपने इकट्ठे शुरू किया था, अपनी बॉडी पे आप ज़्यादा लोड दे रहे थे और ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे थे। यहाँ पे आप कम स्ट्रेच कर रहे हैं, आप लोड दे रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े बाउट्स में लोड दे रहे हैं। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी मान लो एक पर्टिकुलर फिटनेस लेवल पे है, एक वो यूज्ड टू है एक पर्टिकुलर तरीके से जीने के लिए, उसमें अगर आपने प्लस 10% कर दिया तो वो हो सकता है मान लेगी या उतना तक वो ले लेगी, लेकिन आपने प्लस 100% कर दिया तब वो नहीं हो पाएगा। प्लस 100% का भी टाइम है, आप वहाँ पे देखो कि आपको बहुत ही जल्दी आपकी फिटनेस इम्प्रूव होगी। आप ऐसे अगर धीरे 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 प्रोग्रेस करते जाएंगे, कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले दिन, अगर आप पहले दिन जल्दी से और ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि उसके बाद काफ़ी दिन तक आप वर्कआउट ना कर पाएँ, और अगर आप करेंगे भी तो ऑफ एंड ऑन करेंगे, छोड़ेंगे और प्रोग्रेशन उतना अच्छा नहीं होगा। मैंने ये भी देखा है कि जैसे 2 साल पहले करीब मेरा वर्कआउट छूट गया था कोविड की वजह से काफ़ी टाइम तक। फिर जब हमने शुरू किया तो मैं कोच के साथ में वर्कआउट करता था, हमने धीरे 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 शुरू किया और अगले 4 महीने तक लगातार वर्कआउट किया। सोचो आपकी, उसके पहले हम सेडेंट्री हो चुके थे कोविड की वजह से, कोविड के बाद वर्कआउट शुरू किया, 4 महीने तक वर्कआउट किया और डॉम्स एक भी दिन नहीं आया। तो मैं भी सेडेंट्री था आपकी तरह, अगर आप सेडेंट्री हैं तो किसी भी आप अगर सिचुएशन में रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे तब आपको डॉम्स होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पुश करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तब डॉम्स नहीं होगा। और क्या होता है, जब बॉडी वार्म अप हो जाती है तो आपको ये भी लगता है कि अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो इजी है। इसलिए आपको पता है क्या करना है, आप पहले से लिख के लेके जाइए कि हाँ पहले दिन मैं कितना करूँगा, फिर दूसरे दिन वो बॉडी पार्ट्स नहीं करूँगा, दूसरे बॉडी पार्ट्स करूँगा, फिर तीसरे दिन वही बॉडी पार्ट्स करूँगा जो पहले दिन किया था, और उसमें धीरे धीरे आप ग्रेजुअली इम्प्रूव करिए। मैंने देखा है लॉ ऑफ 10% पर वीक इंक्रीमेंट वर्क्स, कि आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने पहले दिन 10 push-ups लगाए पहले हफ्ते में, तो 3 दिन तक, मतलब पहले दिन, तीसरे दिन और 5वें दिन आप 10-10 push-ups ही लगाइए, 2-2 का ब्रेक करके, 3 दिन का ब्रेक करके एक्सेट्रा। दूसरे वीक में 10 से आप 11 push-up पे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए कि आपने पहले दिन 10 push-up किया, 3 दिन के बाद आपने 11 किया, 5 दिन के बाद आपने 15 कर लिया। देन आप देखोगे कि 15 के बाद हो सकता है आपको डॉम्स आ जाए, अगर आपको पहले डॉम्स नहीं आया है तो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डॉम्स की सिचुएशन अवॉइड की जा सकती है, बहुत अच्छे से अवॉइड कर सकते हैं आप। और ये भी आप इस दिमाग में मत रखिए कि नो पेन नो गेन, कि हाँ पेन हो रहा है इसका मतलब मसल्स बन रही, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। मतलब आप अपनी बॉडी को तोड़ के और इनकंसिस्टेंट रह के वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, और वैसे आप इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं। जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरिएबल फैक्टर होता है आपको वर्कआउट से मसल बनाने, वेट लॉस करने या कोई भी फिटनेस अचीव करने में, वो होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलरली कोई चीज़ करेंगे या कर पाएंगे, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर और अगर आपको रेगुलरली कुछ करना है, उसके लिए आपको धीरे 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 चीज़ों को बढ़ानी है, ना कि एकदम एक साथ में, ठीक है। अगर आप मान लो कि आपको डॉम्स हो गया, तब आप क्या करें, क्योंकि ये बहुत इशू, बहुत ज़्यादा इशू होता है कि हाँ डॉम्स हो गया, मैं मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ और ना ऑफिस जा सकते हैं ना कुछ और काम कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वैसे तो आप देखेंगे डॉम्स होने के 2-3 दिन के बाद आपके धीरे धीरे पेन कम होता जाता है, लेकिन हो गया है तो कुछ चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने जो देखा जो मुझे हेल्प करता है वो एक तो है बहुत ही लाइट मसाज, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा फिर से लाइट मसाज और स्ट्रेचिंग। ये नहीं करना है आपको कि कोई भी आपने सॉफ्ट टिश्यू या फिर डीप टिश्यू मसाज ले लिया और उन्होंने एक्सट्रीम प्रेशर के साथ आपको मसाज किया तो उससे सही होगा, नहीं होगा। आप एकदम लाइट अरोमा या फिर रिलेटेड आप मसाजेज ले सकते हैं, हॉट ऑयल के साथ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा एक्सेट्रा। उसके बाद आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं किसी कोच की हेल्प से, लेकिन स्ट्रेचिंग भी एक्सट्रीम नहीं हो, फुली बॉडी वार्म अप करके हो। तो जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ता है बॉडी में वैसे वैसे आप देखेंगे आपको डॉम्स में मदद मिलती है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है आपकी बॉडी में धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि डॉम्स हो गया तो आपने एकदम वर्कआउट बंद कर दिया। मान लो आप रनिंग कर रहे हो और आपके पैरों में डॉम्स हो गया है तो आप वॉकिंग करते रहिए या फिर हल्का हल्का जॉग करिए रिकवरी के लिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। आप न्यूट्रिशनली भी थोड़ा इंटरवेंशन कर सकते हैं, बट मुझे ऑनेस्टली इतना पता नहीं है कि न्यूट्रिशनली क्या क्या खा के कैसे डॉम्स में रिकवरी में मदद मिलती है। स्लीप ऑफ कोर्स विल हेल्प, एंड लाइक आई सेड कि 2 से 4 दिन में आप देखेंगे कि चला जाएगा। लेकिन अगर आपको हुआ है तो स्ट्रेचिंग और मसाज आप कर सकते हैं, उसके बाद हॉट वाटर से आप बढ़िया शावर ले सकते हैं। इफ़ नथिंग एल्स साइकोलॉजिकली आपको बहुत अच्छा फील होगा, और उसके बाद 3 से 4 दिन दीजिए फिर चला जाएगा। वर्कआउट करते रहिए, डॉम्स को लेकर डरिए मत। गुड लक, बाय।